नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के तहत प्रदेश के चार शहरों सीवान, सासाराम, औरंगाबाद और आरा में पेयजल तथा सीवरेज संरचनाओं का होगा विकास। आतंकवाद के खिलाफ भारत के कूटनीतिक प्रयासों के तहत विदेश दौरे पर गए जदयू सांसद संजय झा के नेतृत्व वाले बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल समेत तीन प्रतिनिधिमंडल स्वदेश लौटे। नालंदा, गया और नवादा समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में अब गंगा नदी के अधिशेष जल से सिंचाई भी की जाएगी। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का नया चैंपियन बना, फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के तहत प्रदेश के चार शहर सीवान, सासाराम, औरंगाबाद और आरा में पेयजल और सीवरेज योजनाओं पर 1,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि सीवान में 128 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क के लिए 367 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
सीवान सीवरेज नेटवर्क परियोजना फेज वन, इसकी लागत राशि 367 करोड़ 3,50,075 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। नगर विकास की ही योजना केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन अंतर्गत औरंगाबाद सीवरेज नेटवर्क की योजना स्वीकृत की गई, जिसमें 497 करोड़ 65,67,000 रुपए होंगे। नगर विकास की ही केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन योजना के अंतर्गत सासाराम जल आपूर्ति परियोजना स्वीकृत किया गया, इसमें 76 करोड़ 44,10,000 रुपए होंगे।
आतंकवाद के खिलाफ भारत के सिद्धांत और कड़े रुख का संदेश लेकर विदेश गए 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों में से 3 अपनी सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडलों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के अंतर्गत विदेशी नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, प्रभावशाली विचारकों, मीडिया और प्रवासी भारतीयों से बातचीत की। जनता दल यूनाइटेड सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कुआलालंपुर में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। श्री झा ने कहा कि हमने हर जगह पाकिस्तान पर वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF द्वारा कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
एक बात हम लोगों ने जरूर वहां आग्रह किया हर एक जगह, जिसका कि एक तरह से समर्थन भी था, कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसको दोबारा जुलाई में मीटिंग है, उसमें सपोर्ट होना चाहिए। वहां के विदेश मंत्री, एक्स प्राइम मिनिस्टर, वहां के पार्लियामेंटेरियंस, वहां का डिफरेंट कंट्री के जो वहां एम्बेसडर है, जो थिंक टैंक है, वहां का जो मीडिया है, वहां का जो इंडियन डायस्पोरा है, सब लोगों से हम लोगों ने इंटरेक्ट किया। मुझे लगता है कि एक कंफ्यूजन की स्थिति भी थी, ये पूरा डेलीगेशन जाने से मैसेज रेस्टोर।
इधर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले दल ने लंदन के यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर राइट ऑनरेबल सर लिंडसे हॉयल से मुलाकात की। इस दौरान स्पीकर ने स्वीकार किया कि आतंकवाद किसी भी रूप में लोकतंत्र के लिए खतरा है। वहीं श्री प्रसाद ने पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह दृष्टिकोण लोकतांत्रिक समाज की नींव को नष्ट करता है।
बहुत ही अच्छा रहा है हमारा इंग्लैंड का, हमारी यात्रा पूरी हो रही है। अभी यहाँ इंडिया हाउस में हम लोगों ने प्रेस भी की है, हाउस ऑफ कॉमन के स्पीकर से मिले हम लोग, जो उनके कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन है उनसे मिले थे, प्रीति पटेल शैडो फॉरेन सेक्रेटरी उनसे मिले थे, और वो सभी इस चिंता से हैं जो हम लोग बता रहे हैं कि आतंकवाद एक बहुत ही बड़ा नासूर है, कैंसर है, इसे दुनिया को संभलने की जरूरत है।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाते हुए पूरा राष्ट्र अपने सैनिकों की वीरता को सलाम करता है। सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि स्वरूप आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम परमवीर चक्र विजेता नायक जदुनाथ सिंह को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था।
1916 में उत्तर प्रदेश में जन्मे पहली बटालियन राजपूत रेजिमेंट के नायक जदुनाथ सिंह जम्मू और कश्मीर में नौशेरा के नजदीक तैनधार में चौकी कमांडर थे। 1947-48 के भारत पाक युद्ध के दौरान दिसंबर 1947 को झंगर पर कब्जे के बाद पाकिस्तानी हमलावरों ने नौशेरा सेक्टर में रणनीतिक बढ़त हासिल की। आगे के हमलों की आशंका को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने तैनधार रिज सहित प्रमुख स्थानों पर अपने नियंत्रण को मजबूत किया, जहां नायक जदुनाथ सिंह ने 9 लोगों की अग्रिम चौकी की कमान संभाली। 6 फरवरी 1948 की धुंध भरी सुबह में दुश्मन की सेना ने तैनधार पर बड़े पैमाने पर एक के बाद एक हमला करना शुरू किया। संख्या में कम होने के बावजूद नायक जदुनाथ सिंह ने दुश्मन के इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। खुद घायल होने के बावजूद उन्होंने घायल गनर से ब्रेन गन ली और दुश्मन पर हमला किया, जिससे दुश्मन का दूसरा हमला रुक गया। तीसरे हमले के अंत तक चौकी पर मौजूद 27 जवानों में से 24 जवान शहीद या घायल हो चुके थे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एक स्टेन गन के साथ उन्होंने अकेले ही शत्रुओं का सामना किया, जिससे डरकर हमलावर भाग खड़े हुए। अदम्य साहस और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए। इस उत्कृष्ट शौर्य और सर्वोच्च बलिदान के लिए नायक जदुनाथ सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी 165 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। भवन निर्माण विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री बाढ़ में नवनिर्मित राजकीय पॉलिटेक्निक भवन और 100 बेड की क्षमता वाले अनुमंडलीय अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। श्री कुमार आत्मलगोला में निर्मित प्रखंड सह अंचल कार्यालय और आवासीय परिसर तथा राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय भवन का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। दक्षिण बिहार के कई जिलों में अब गंगा नदी के अधिशेष जल से सिंचाई की जाएगी। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने बताया कि अभी गंगा जल से नालंदा, गया और नवादा जिलों में रहने वाले लोगों को पेयजल की आपूर्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि अब इन इलाकों में इस जल का उपयोग खेतों में सिंचाई के लिए भी किया जाएगा। प्रधान सचिव ने कहा कि मानसून के समय गंगा में आने वाले अधिशेष जल को पाइपलाइन के माध्यम से बांका जिले के बेलहर स्थित बदुआ जलाशय तक पहुंचाने की योजना बन रही है। उन्होंने बताया कि औरंगाबाद, डिहरी तथा सासाराम में सोन नदी के सतही जल का उपयोग करते हुए शीघ्र ही पेयजल योजनाएं शुरू की जाएंगी। वहीं दुर्गावती जलाशय से भभुआ और मोहनिया शहरों को भी जल आपूर्ति की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_ पटना पर जा सकते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 साल के इंतजार के बाद पहली बार आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में पंजाब किंग्स की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 184 रन ही बना सकी। विजेता टीम आरसीबी को 20 करोड़ रुपए जबकि उप विजेता पंजाब किंग्स को 12.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। 5 दिवसीय वार्षिक हज रस्मों की विधिवत शुरुआत आज से सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में हुई है। भारत सहित दुनिया भर से लाखों लोग पहले दिन मक्का के मीना में एकत्रित हो रहे हैं। ये लोग आज रात मीना में बिताएंगे और कल सुबह हज की मुख्य रस्म अदा करने के लिए अराफात के मैदान जाएंगे। हज यात्री वहां विशेष प्रार्थना करेंगे और शाम में मुजदलिफा की ओर प्रस्थान करेंगे। ये यात्री कल मुजदलिफा में खुले आसमान के नीचे रात बिताकर अगली सुबह दोबारा मीना लौटेंगे। मौसम विभाग ने आज पटना, मुजफ्फरपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, सीतामढ़ी और शिवहर सहित कई क्षेत्रों में बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह से ही पटना और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। विभाग ने कहा है कि आज राज्य के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले में झोंके के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है।
राज्य के पूर्वी भाग के जिलों के कुछ स्थानों एवं शेष भाग के जिलों के एक या दो स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद एवं गया जिलों के कुछ स्थानों जबकि शेष जिलों के एक या दो स्थानों में होने की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है।
ग्रैमी अवार्ड विजेता और पद्म भूषण से सम्मानित पंडित विश्व मोहन भट्ट आज पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर में मोहन वीणा की प्रस्तुति देंगे। पंडित सलील भट्ट सात्विक वीणा और अभिषेक मिश्रा तबला पर संगत करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन कला, संस्कृति और युवा विभाग की ओर से किया जा रहा है। और अब जिलों से प्राप्त संक्षिप्त समाचार। सुपौल जिले की एक अदालत ने नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी मोहम्मद अमजद को 22 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50,000 रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। मुजफ्फरपुर के तुर्की में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपित को भगाने और प्राथमिकी दर्ज कराने में आनाकानी करने के आरोप में स्थानीय थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार को निलंबित कर दिया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि मामले में दारोगा मंजर आलम और मोहम्मद फरीदी को भी निलंबित किया गया है। निगरानी अन्वेषण की टीम ने पटना जिले के विक्रम अंचल कार्यालय परिसर में राजस्व कर्मी सोनू कुमार को 20,000 रूपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जमीन पर दखल दिलाने के नाम पर घूस ले रहा था। अररिया जिले के फारबिसगंज में आईपीएल में सट्टा लगाने के मामले में पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने आईपीएल से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पंजाब को पस्त कर बेंगलुरु पहली बार आईपीएल का बादशाह बना। दैनिक भास्कर ने राज्य कैबिनेट की मंजूरी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, 4,863 पदों के लिए 7 विभागों में बहाली होगी। दैनिक जागरण की विशेष खबर है, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए नियुक्त होंगे 390 अफसर। प्रभात खबर लिखता है, मुजफ्फरपुर के दुष्कर्म पीड़ित की मौत मामले में कार्रवाई, एसकेएमसीएच की अधीक्षक हुई सस्पेंड, पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक हटाए गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के तहत प्रदेश के 4 शहरों सीवान, सासाराम, औरंगाबाद और आरा में पेयजल तथा सीवरेज संरचनाओं का होगा विकास। आतंकवाद के खिलाफ भारत के कूटनीतिक प्रयासों के तहत विदेश दौरे पर गए जदयू सांसद संजय झा के नेतृत्व वाले बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल समेत 3 प्रतिनिधिमंडल स्वदेश लौटे। नालंदा, गया और नवादा समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में अब गंगा नदी के अधिशेष जल से सिंचाई भी की जाएगी। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का नया चैंपियन बना, फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।